खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम को सीखना शुरू करें, चंद लम्हों के लिए उसके हजूर झुक जाएंगे, उसकी हिकमत और दनाई मांगेंगे, उसके रहम को और उसके फजल के तख्त के सामने दलेरी से हाजिर होंगे। अहम दुआ करें। खुदा बाप, हम सब तेरे शुक्रगुजार हैं आए हुई तमाम बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए और जो नहीं आए, उन सब के लिए दुआ है कि खुदावंद उन सब को भी तू बेदार कर और आज जो कुछ भी सीखे हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप, उसकी चौथी आयत से हम 10वीं आयत तक पढ़ेंगे और चंद एक बातें सीखेंगे। और खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे, तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यसु में हम पर है आने वाले ज़मानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, और ना अमाल के सबब से है ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमेन। यहां पर हमने पिछले दिनों में खुदा के कलाम में से चौथी आयत पर गौर की और चौथी आयत में हमने देखा था कि मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, और हमने इसके बारे में सीखा था कि खुदा ने हर एक शख्स पर, खासकर वो तमाम लोग जो अपने आप को इस काबिल समझते हैं, जो अपने आप को खुदा के हजूर फरोतन बनाते हैं, खुदा ने अपने रहम की बारिश बरसाई। आपको याद होगा जिंदा मिसाल जो कि यसु मसीह ने दी, जब यसु मसीह अपने शिगिर्दों से बात कर रहे थे, और ये वाक्य आपको लूका की इंजील उसके 18वें बाप में मिलेगा कि वहां पर एक बात यसु मसीह एक कहानी बयान कर रहे हैं। वो क्या है कि दो शख्स हैकल में दुआ करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा महसूल लेने वाला। और आपको याद होगा कि फरीसी ने क्या कहा कि मैं रोज़ा रखता हूँ, मैं दायकी देता हूँ, मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं नेकियाँ करता हूँ और मैं जालम नहीं और मैं इस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूँ। तो क्या हुआ, कहानी के आखिर में पता चलता है जब वो अपने घर गया तो वो रासबाज ना ठहरा, लेकिन एक महसूल लेने वाले ने क्या किया, उसने इस हकीकत को जाना कि वो इस काबिल ही नहीं, वो इस ऐसा है ही नहीं, इस लायक ही नहीं कि वो खुदा के सामने अपनी नजरें उठाए। उसने अपने आप को फरोतन किया, अपनी हालत को पहचाना और क्या किया, कहा कि मैं इस लायक नहीं, और आसमान की तरफ सर ना उठाया बल्कि अपनी छाती पीट पीट कर क्या कहा कि ऐ खुदा मुझ पर रहम कर, मुझ गुनाहगार पर रहम कर, यानी कि मैं कसूरवार हूं, मैंने जो कुछ किया है उसका मैं तकाजा ये करता हूं कि तू मुझ पर रहम कर और मुझे माफ कर। तो क्या हुआ, यीशु मसीह ने कहा कि जब वो महसूल लेने वाला अपने घर गया तो दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरा, रासबाज का मतलब यानी कि किसी को कह देना कि तू मुकम्मल तौर पर बेऐब है, पाक है, तुझ में कोई गुनाह गलती नहीं पाई गई, अब से तू बेऐब है। सो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह का रहम के बारे में बात करना क्यों और क्या हमें सिखाता है कि जो कोई अपने आप को खाकसार बनाता है। सो यहां पर हम देखते हैं पालूस भी यही कहता है कि मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से जब हम लाचार और बे यारो मददगार थे, जैसे हमने पिछले दिनों में जो कहानी देखी, मेरे साथ इसको देखें, क्योंकि पिछले दिनों में जब हम बात कर रहे थे तो बिजली बंद हो गई। मैं चाहता हूं इस कहानी पर, इस सच पर गौर करें। मत्ती की अंजील मेरे साथ निकालें, उसका 9वां बाप, उसकी 35वीं और 36वीं आयत। यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह अंधों को, लंगड़ों को, गुनाहगारों को, लाचारों को, बीमारों को क्या दे रहा है, और बदरू गिरफ्तार लोगों को आजादी दे रहा है, शिफा दे रहा है, बोलने की, देखने की कुव्वत और ताकत दे रहा है। और यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस गांव, उस वक्त उन गांव में, उन शहरों में जा जाकर क्या करता रहा, उनके घरों, उनके खानदानों को, उनके घराने के लोगों को तलीम देता रहा तमाम आबाद खानों में। और उसकी तलीम क्या थी? खुशखबरी का मनादी, खुशखबरी की मेनादी करता रहा, बीमारों को शिफा देता रहा और कमजोरों की कमजोरियों को दूर करता रहा। और ये उसने क्यों किया? क्योंकि उस वक्त के जो फकी और फरीसी, जो रब्बी, जो रहनुमा थे, जो उस्ताद थे, वो अपना काम नहीं कर रहे थे जो उनको करना चाहिए। उनको चाहिए था कि उस वक्त के लोगों को तालीम देते, लेकिन वो तालीम नहीं दे रहे थे। उनकी, फरीसियों की ये ड्यूटी थी, ये जिम्मेदारी थी उन तमाम रबियों और काहिनों की कि वो लोगों को खुदा का कलाम और उसके रहम के बारे में बताएं, लेकिन वो नहीं बता रहे थे। और इसका हमें किस तरह पता चलता है कि लोगों की हालत कैसी थी? 36वीं आयत, मत्ती की इंजील 9वां बाप, उसकी 36वीं आयत, और लिखा है, और जब उसने, यानी कि यीशु मसीह ने, और जब उसने भीड़ को देखा, ये भीड़ हजारों की हो सकती है, 10,000 की हो सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन यहां पर लिखा है जब उसने भीड़ को देखा, यानी कि बहुत ज्यादा लोग हैं, तो उसको, किसको? खुदावंद यीशु मसीह को, लोगों पर तरस आया। तरस आया, तरस का मतलब है रहम आया। यीशु मसीह ने उन पर तरस किया, उन पर रहम दिली की, उन पर शफकत की नजर से निगाह की। क्यों? आगे देखते हैं क्या लिखा। उसको लोगों पर तरस आया क्योंकि वो उन भेड़ों की मानद, उन भेड़ों की मानद जिनका चरवाहा ना हो, जिनका चरवाहा ना हो, ऐसी भेड़ें जिनकी कोई देखभाल करने वाला ना हो। और यहाँ पर जो बात, जो तरीका, जो अल्फाज यीशु मसीह ने इस्तेमाल किए हैं, वो इसलिए किए हैं क्योंकि शुरू ही से, पैदाइश ही की किताब से लेकर हमें ये बात चलता है, ये बात कलाम बताता है और हमें सिखाता है कि भेड़ें, हर वो शख्स है, भेड़ें बनी इसराइल कौम को जाहिर किया गया है, और चरवाहा कौन है? खुदावंद खुदा। सो यहां पर खुदावंद खुदा ने उन भेड़ों को, उन लोगों को देखा जिनको भेड़ों से तशबीह दी कि उनका चरवाहा कोई नहीं, उनकी पासबानी, उनकी निगाहबानी करने वाला कोई नहीं, और उनकी हालत क्या है? खस्ता हाल, यानी कि उनके हाल दुरुस्त नहीं है, और परागंदा, यानी के वो उलझे हुए हैं, वो खोए हुए हैं, वो अपना रास्ता भूले हुए हैं, पता नहीं कि किधर जाना है, क्या करना है, क्या हकीकी राह है, क्या सच है। और यीशु मसीह ने जब ये हालत देखी तो क्या किया? उन पर तरस किया। और इसके बारे में यीशु मसीह का कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा ने इसराइल के चरवाहों पर अफसोस किया था, इसराइल के पासबानों पर अफसोस किया था कि उन्होंने अपनी भेड़ों पर रहम नहीं किया, उन्होंने अपनी भेड़ों पर तरस नहीं किया, अपने लोगों को तालीम नहीं दी, अपने ही मनमानी में, अपने ही बड़ेपन में, अपनी ही खुदपरस्ती में मगन थे, जिसके बारे में हिजकील नबी नबूवत के तौर पर कहता है, मेरे साथ निकालें पुराने अहदनामा में से नोहा की किताब के बाद हिजकील नबी का सहीफा मिलेगा, उसका 34वां बाप, उसमें से चंद एक आयात, बल्कि इन आयात को पढ़ना चाहता हूं ताकि बाइबल खुद गवाही दे कि जब चरवाहे, जब भेड़ों की हालत खस्ता और परागंदा होती हैं, तो उनका अल्जाम किस पर आता है? क्योंकि चरवाहों ने अपनी भेड़ों की गलाबानी नहीं की। और ये आज के दौर में हम सब पर भी लाजम है, हम सबको भी, जैसे उस वक्त यीशु मसीह ने जब उनको बताया, शिगिर्दों को कहा कि ये कुछ हो रहा है, तो यीशु मसीह ने उनको मुकरर किया और कहा कि जाकर मेरे रहम और तर्स और मेरी खुशखबरी के बारे में बताओ। और यहां पर हम देखते हैं हिजकील 34वां बाप, उसकी पहली आयत, जो पढ़ सकते हैं पढ़े, जो नहीं बल्कि गौर से सुने। हिजकील 34वां बाप उसकी पहली आयत में लिखा है, और खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। हिजकील नबी पर खुदा का कलाम नाजिल हुआ कि ए आदमजात, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर, यानी के बात कर, उनके बाद उनके मुता उनके बारे में कह, हाँ नबूवत कर और उनसे कह, खुदावंद खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं, भेड़ों की कोई फिक्र नहीं, वो अपना ही पेट भर रहे थे। और यहां पर क्या कहता है खुदा का कलाम, क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? भेड़ों को चुराने से मुराद उनकी देखभाल करना, उनकी रहनुमाई करना। आपको याद होगा जब पतरस उम्मीद छोड़ चुका था, जब पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, जब पतरस अपने पुराने कारोबार को वापस लौटा, तो वो बेदिल है, लेकिन यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ, यूहन्ना की इंजील उसके 21वें बाप में, तो यीशु मसीह ने 3 बार उससे क्या कहा, पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा हाँ, फिर हाँ, फिर हाँ। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे भरों को चरा, मेरी भेड़ों की निगाहबानी कर, यानी कि जा और अपने काम को ना भूल, जिस काम के लिए मैंने तुझे बुलाया था उसको पूरा कर। तू मछलियों का शिकारी था, लेकिन अब जाकर आदमियों का शिकार कर, उनकी रहनुमाई कर, उनको चरा। चरवाहे का काम है निगाहबानी करना, चराना। और यहां पर क्या हुआ, तीसरी आयत में चरवाहों से कहा गया, तुम चिकनाई खाते और ऊन पहनते हो और जो फरबा हैं उनको ज़िबह करते हो, लेकिन गल्ला नहीं चराते। इसराइल के चरवाहों की, काहनों की ये हालत थी कि वो अपना पेट भर रहे थे और जो मोटी ताज़ी भेड़ें होती थी उनको उनको वो ज़िबह करते थे, उनको वो इस्तेमाल करते थे, उनका रुपया पैसा, यानी कि जो लोग रुपया पैसा उस वक्त रखते थे, जो अच्छे लोग थे मुआशरे में, उनको ही वो बुलाते थे, लेकिन दूसरों से कोई तलक नहीं रखते थे। और चौथी आयत में लिखा है, तुमने कमजोरों को तवानाई और बीमारों को शिफा नहीं दी और टूटे हुओं को नहीं बांधा और जो निकल गए उनको वापस ना लाए और गुमशुदा की तलाश नहीं की, बल्कि जबरदस्ती और सख्ती से उन पर हुकूमत की। आज भी ऐसा ही होता है, चरवाहे अपनी खिदमत नहीं करते, अगर कोई खिदमत करने की कोशिश करे तो फिर उन पर सख्ती की जाती है, उन पर इल्जाम लगाया जाता है, उन पर ताने उठाए जाते हैं, उंगलियां उठाई जाती हैं कि तुमको किसने बुलाया, तुम दर्जी के बेटे होकर किस तरह खुदा की खिदमत कर सकते हो, तुम किसी जादूगर खानदान से निकलकर किस तरह मसीह की मुनादी कर सकते हो? तुम नहीं, इस काबिल नहीं। ये आज भी होता है। और छठी आयत में क्या लिखा है? और वो तितर बितर हो गए क्योंकि कोई पासबान ना था, और वो परगंदा होकर मैदान के सब दरिंदों की खुराक हुए। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों पर और हर एक ऊंचे टीले पर भटकती फिरती है। हाँ, मेरी भेड़ें तमाम रूहे जमीन पर तितर बितर हो गईं, और किसी ने ना उनको ढूंढा ना उनकी तलाश की। इसलिए ऐ पासबानों, खुदा का कलाम सुनो। खुदावन खुदा यूं, खुदावन खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, क्योंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दश्ती जानवर की खुराक हुई क्योंकि कोई पासबान ना था, और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश ना की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। ये उस वक्त चरवाहों की हालत थी। और यीशु मसीह का कलाम बताता है कि खुदा उन पर अफसोस करता है, कहता है कि तुमने अपनी खिदमत को अंजाम नहीं दिया। और यही बात यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से कहता है, जब बड़ी भीड़ को देखा कि काहिन अपना काम नहीं कर रहे, जब देखा कि उस वक्त के जो रब्बी है, जिन्होंने ये कसम खाई थी कि हम अपनी जिंदगी खुदा की हैकल और उसके लोगों की खिदमत के लिए गुजारेंगे, उन्होंने अपनी सोचों को बदल लिया और लोगों को अपना फायदा बनाया। लोगों से जहबिये लिए, लोगों से हदिये लिए, और फिर बात खत्म। उन पर मसलसल बगैर सोचे समझे उन पर बोझ डाला कि अगर तुम ये करोगे तो ये होगा, अगर ये नहीं करोगे तो ये होगा। क्यों ये सारी बातें करने की जरूरत है? क्योंकि खुदा ने अपने रहम की दौलत से, हम सबको बहाल किया है। और यीशु मसीह ही वो अच्छा चरवाहा है जो हम सबको, जब हम खोए हुए थे, जब हम गुनाह में थे, जब हम तारीकी में थे, तो इस दुनिया में आया ताकि हमको ढूंढे। और यीशु मसीह ने ये बात कही है, और यही हाल हमें नजर आता है लूका की इंजील 19वां बाप उसकी पहली आयत से 10वीं आयत के हिस्सा में, जब जिक्रिया जो महसूल लेने वाला था, लोग उससे नफरत करते थे, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लोग उसके मुखालफ थे, और काहिन और दूसरे तमाम सरदार कहते थे ये गुनाहगार हैं। तो यीशु मसीह ने उस पर निगाह की कि ये इसराइल की खोई हुई भेड़ है, इसे ढूंढने की जरूरत है। और जब जिक्रिया ने जकई ने माजर चाहता हूं जकई ने निजात पाई, तो वहां पर यीशु मसीह ने क्या कहा था? क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। ये इब्ने आदम वही है जो हिजकियल 34वें बाप में कहता है कि मैं अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा क्योंकि पासबानों ने, काहिनों ने अपनी खिदमत को अंजाम नहीं दिया। आज ये सवाल मैं अपने आप से करता हूं कि क्या मैं एक काहिन की तरह या चरवाहे की तरह, पासबान की तरह अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूं या नहीं? यही सवाल आप सबको भी अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या जो कुछ खुदा चाहता है मैं या कर रहा हूं या कर रही हूं? अगर नहीं, तो याद रखें, हम सबको अपना जवाब खुद देना होगा। जो जिम्मेदारी उसने हमको दी है उसका वो मुझसे पूछेगा, मेरे किसी रिश्तेदार से नहीं पूछेगा। जो जिम्मेदारी आपको दी है खुदा आपसे पूछेगा, किसी और से नहीं पूछेगा। सो खुदा ने हम पर अपने रहम की दौलत से, अपनी उस बड़ी मोहब्बत के सबब से ये फजल किया है कि हम उसके लोग हों। सो हर रोज अपनी जिंदगी में जानने की जरूरत है कि क्या हम यीशु मसीह आया निजात दे, क्या हम ढूंढने के लिए जाते हैं? क्या हम दूसरों को बताते हैं उसके रहम के बारे में? क्या हमने अपने आप को छुपाया तो नहीं हुआ अपने आप को, शर्म के पर्दे में लपेटा तो नहीं हुआ, क्योंकि पालूस कहता है कि मैं अंजील की खुशखबरी से शर्माता नहीं, हमें भी शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि वक्त थोड़ा है, और इससे पहले कि हमारी जिंदगी के दिन खत्म हो, हमें यीशु मसीह के बारे में बात करने की जरूरत है। आए हम खुदा के जुड़ चुके हैं। खुदा बाप, तमाम कलाम के हिस्सा में हम सबको खुदा खुदा जो कुछ बातें सीखी हैं बरकत दे और कबूल करें और दूसरों तक पहुंचाएं, और खुदावन तेरे हम शक्ल बने, ना के इंसानों के, बल्कि तेरे हम शक्ल बने। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।